نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگلا چپٹر ہے پانی کے مسائل. پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن تودأ نو اس کو بھی ٹھیک کیجیے. فإن نون پہ جزم ہوگی. فإن تودأنا به تودأنا به أتشنا أفنتودأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں اگر اس سے وضو کر لے تو پیاسے رہ جائیں کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور یعنی مچھلی حلال ہے. اسے احمد ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اس سے دیکھیے کہ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں, پہلی بات ہے کہ سمندری سفر صحابہ کرام کے دور میں ہی شروع ہو چکے تھے. پھر دوسری بات ہے کہ پانی کی قلت ہوتی تھی تو ساتھ گھر سے پانی پینے کے لیے لے کے جاتے تھے, لیکن چونکہ سمندر میں پانی تو ہوتا ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم پانی کے سب وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہتا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیے کہ بہتا پانی پاک ہے, یعنی سمندر کا پانی پاک ہے. ٹھیک ہے آپ نہ پئیں, آپ کو اس میں نمک لگتا ہے, وٹ ایور, اس اوکے, لیکن اپنی حساب سے وہ اصل کے اعتبار سے وہ پاک ہے, کلین ہے. دریا کا پانی ہے, پاک ہے. چشمہ ہے, آبشار ہے, پاک ہے. پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پانی جو کھڑے ہوئے پانی ہے, مثلا جیسے سوئمنگ پولس کے اندر آپ دیکھیں یا آپ کوئی ایسی پانی کا جوہر ہے اس کے بارے میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا. کیا دیکھنا ہوگا یہ اگلی روایت سے ہمیں پتہ چلے گا. پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے. ان ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا وميمونة رضي الله عنها في قصعة فيها أثر العجين رواه النسائي. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا, پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا. اسے نسائی نے روایت کیا. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں اتنی کمی تھی برتنوں کی کہ وہی برتن جو آٹا گوندھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اسی میں پانی جمع کر کے غسل کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر غسل کے لیے استعمال ہوگا تو بعد میں اس کو دھو لیا جائے گا. پھر اگلی بات سے اس سے پتہ چلی کہ اگر آٹا بیچ میں تھوڑا سا مل گیا, اب آٹا تو پاک ہے نا, تو پانی گندا نہیں ہوتا. تو معیار کے पाक चीज़, यहाँ आटा पाक चीज़ है ना, क्लीन चीज़ है, पानी का रंग या जायका बदल दे, क्योंकि जब पानी में आटा मिलेगा तो थोड़ा सा रंग तो बदलता है ना, मतलब धुंधला सापन आ जाता है, ठीक है, और अगर आप चखें तो उसमें आटे का हो सकता है टेस्ट भी आ रहा हो, लेकिन चूंकि ये पाक चीज़ है तो पाक है। तो इससे क्या पता चला कि पानी में अगर कोई चीज़ गिर जाती है या किसी वक्त वो पानी ऐसा है कि उसमें कोई आपको फील हो रहा है कि किसी चीज़ का असर है, तो आप फिर भी कर सकते हैं। अब इसका ये नहीं मतलब कि आप रूह अफ़ज़ा शरबत बनाएं और वज़ू करना शुरू कर दें, मक्खियाँ चिपकेंगी तो आप खुद ही छोड़ देंगे, लेकिन शरण कर सकते हैं, ठीक है, यानी पाक चीज़ से रंग और जायका दोनों बदल जाएँ। फिर अगली हदीस देखिए, और ये पूरा टॉपिक इकट्ठा होगा तो इस पे फिर कुछ चीज़ें हम अलग से भी देख लेंगे। बिल्ली का जूठा नापाक नहीं होता, मियाँ बीवी दोनों बयक वक्त एक ही बर्तन के पानी से वजू कर सकते हैं। अन आयशत रदी अल्लाहु अन्हा कालत कुंतु अतवद्दउ अना व रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन कद असाबत मिनहुल हिर्रतु कबल ज़ालिका रवाहु इब्नु माजा। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से वुज़ू करते, हालांकि इस पानी से बिल्ली भी पी चुकी होती। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। और दूसरी रिवायत आगे, अन अबी क़तादत रदी अल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات رواه أبو داود والنسائي والترمذي वब्न माजा। हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में फरमाया, ये नापाक नहीं बल्कि तुम्हारे पास घरों में आती जाती रहती है। इसे अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो दोनों बातें बिल्कुल वाज़ह हैं, बिल्ली नजस नहीं होती, किसी बर्तन में मुंह डाल ले या अगर पानी भी हत्ता कि उसने पिया हुआ फिर भी उसको अगर कोई इस्तेमाल करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कुत्ते की बात इससे मुख्तलिफ है, उसके लिए अलग से बात आती है और कहीं ना कहीं वो बात आगे आएगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इस्तेमाल शुदा पानी में निजासत ना पड़ी हो तो पानी पाक ही रहता है। अन जाबिर इब्नि रदी अल्लाह अन जाबिर इब्नि अब्दुल्लाह रदी अल्लाहु अन्हुमा قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فأقلت رواه البخاري। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैं बीमारी की वजह से बेहोश था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और वुज़ू से बचा हुआ पानी मुझ पर डाल दिया तो मुझे होश आ गया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो आप देखिए कि वुज़ू जब किया जाता है तो पानी कुछ ना कुछ बच जाता है, आज के और उस दौर के हालात में थोड़ा सा आप फर्क समझेंगे। आजकल तो टैप वाटर है, टूटी खोलते हैं और पानी से वजू कर लेते हैं। उस दौर में ये तसव्वुर नहीं था, दूर से पानी लाते थे और छोटे छोटे बर्तनों में जमा होता था। आज भी शायद कुछ ऐसी जगह हों कि जहाँ बराह रास्त पानी नहीं आता, तो लोग बर्तनों में पानी जमा करके रखते हैं और उसी से फिर बाकी काम करते हैं। तो ये उस दौर की बात है। तो वो हो या आज किसी भी दौर में हो, अगर पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो वो पाक होता है, कोई हरज की बात नहीं। और ये जो बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए पानी के छिड़कने से उनको होश आ गया, तो ये सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए था। अब आज हम आप या कोई पीर या कोई इस तरह का बुजुर्ग ये अमल नहीं कर सकता, क्योंकि नबी की और आप एक आम उम्मती के अमल में बहरहाल फ़र्क होता है। एक छोटा छोटी सी सलाह आपकी कराना चाहूँगी। आप उर्दू में ज़रा बोलें ये जुमला कि क्या आपने वजू किया है, या जैसे भी अपनी इस्तेलाह में बोलते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या करते हैं? ऊंची बोलें सर जी। कितने लोग कहते हैं कि मैं वजू कर रही हूँ? हाथ खड़ा करें, शाबाश, डरे नहीं। ठीक है, सब वजू करते हैं ना? ठीक है ना जी। ठीक है, बस मैं जो बात पूछ रही है ना वो इसी में आती है। हम उर्दू में क्या कहते हैं कि मैं वज़ू करने जा रही हूँ? ठीक है, अरबी ज़ुबान में वज़ू और वुज़ू में फ़र्क है, क्या समझे जी? नफीस साहब बताएं, क्या क्या सही क्या है, मैं वज़ू करने जा रही हूँ या मैं वुज़ू करने जा रही हूँ? वाव पे ज़बर होगी या पेश होगी? सब्र नहीं हो रहा था। हाँ जी, आप बताएं। पर वुज़ू, वुजू अमल है, और वजू उस बर्तन को कहते हैं जिसमें से पानी लेके वजू किया जाए, वुजू किया जाए। ठीक है, तो सही लफ्ज़ क्या होगा? मैं वुजू करती हूँ। या आपने मेरा हाल है कि सिराते मुस्तकीम का याद रखा हुआ है, वहाँ ये बात हुई थी, मुझे याद आ रही है जी। तो बहरहाल थोड़ा सा इसको हम देखने की ज़रूरत है। आगे देखिए, पानी में निजासत शामिल हो जाए तो पानी नापाक हो जाता है। अन जाबिरिन रदी अल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा अन्नहु नहा अन युबाला फिल मा इर्राकिद, रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने से मना फरमाया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। खड़े पानी से क्या मुराद है? मसलन थोड़ा सा पानी कहीं रखा है, जोहड़ है, और ख़ास तौर पे मैं जब भी इस हदीस को पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में तो स्विमिंग पूल का तसव्वुर आता है। आज देखिए कि ये एक आम रिवाज है कि लोग पब्लिक स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। स्विमिंग में तो हर्ज नहीं होगा अगर उसको बाकी चीज़ों के साथ लेके चला जाए, लेकिन क्या आपको तो यकीन है कि जो लोग उसमें स्विमिंग करते हैं और कई घंटों के एतबार से करते हैं, क्या फिर वो पानी पाक रहा होगा? और बाद जगह तो ऐसी ऐसी यानी चीज़ें सामने आती हैं कि बात करते हुए भी घिन आती है। तो अगर कोई किसी भी जगह ऐसा यानी मामला हो तो ये चीज़ श्योर की जाए कि क्या वो पानी पाक है, वरना आपके अच्छा कोई बात नहीं, बाद में हम अंदर जाके फिर साफ़ पानी से गुसल कर लेंगे, लेकिन जितनी देर वो आप उस कैफियत में रहे आपका दिल मंद है। तो थोड़ी सी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और अगर बिलफर्ज, मेरा ख्याल है इस पे तो कोई कानून लगा ही नहीं सकता, ये तो वही बंदा अपने आप को ऐसी चीज़ों से रोकेगा जिसको अल्लाह का खौफ है या जिसमें खुद भी पाकी और नापाकी का कोई फ़र्क है, वरना आप वहाँ फ़ाइन भी लिख दें तो कौन उसको चेक करेगा? तो बहरहाल ये एक छोटी सी चीज़ थी जो इसमें हमारे सामने आई कि खड़े पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। आप कम अज़ कम अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ के ज़िम्मे तो इतना इतना भारी काम है ना कि उसको तो फिर किसी और चीज़ की फुर्सत ही नहीं रहनी चाहिए अपने बच्चों की परवरिश के दौरान कि इतनी इतनी बातों पे करें। मिसाल है कि आप अपने बच्चों को समर में किसी स्विमिंग कैंप में डलवाते हैं तो उनको पहले से ये बातें बताएं कि बेटा अगर आपको ज़रूरत हो पहले से फारिग होके जाए, वहाँ से निकल के जाएँ, लेकिन वहाँ ना करें। आप ये पसंद करते हैं कि जब आप जाएँ तो अंदर किसी और ने भी ये काम किया हो, तो मेरा ख्याल है कि इस बात से तो इंसान फौरन फिर संभल जाता है। चलिए अगला बाब देखते हैं, और 11:15 पे ब्रेक होगी, आप लोग रेडी रहिएगा इंशाल्लाह ताला जी। आदाबुल खलाई, थक तो नहीं गए आप लोग? थक गए लग रहा है, बंद कर दी हुई थी बुक्स आपने, है जी। आदाबुल खलाई,
आदाबुल खलाई।
रफ़ाए हाजत के मसाइल, यानी टॉयलेट यूज़ करने के मसाइल, टॉयलेट मतलब यूज़ करने के, बैतुल खला में दाखिल होने और निकलने की मसनून दुआ ये है। अन अनसिन रदी अल्लाहु अन्हो काल, कान रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खलाअ यकूलु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो फरमाते, ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। अगली भी इसके साथ एक हदीस है। अन आयशा रदी अल्लाह अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा खरजा मिनल गाइती काला गुफरानका, रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसाई व तिरमिजी व इब्नु माजा। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर आते तो गुफरान अका, या अल्लाह, मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ फरमाते। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई और तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो ये दो दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी से मिलती हैं, और हमारा भी अमल होना चाहिए। बाथरूम में जाने से पहले इसको बाहर दरवाजे पे खूबसूरत तरीके से लिख के लगाया भी जा सकता है। इसके नीचे तर्जमे पे अगर आप गौर करें तो वाकई फ़ायदा होता है। और अगर आप, मिसाल है कि हम यहाँ के लिए भी बनाते हैं, तो नीचे नॉर्वेजियन लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं यहाँ जिनको अरबिक नहीं समझ आती या उर्दू समझ नहीं आती, तो फ़ायदा होगा। और आप देखिए कि कितनी मीनिंगफुल दुआ है ना। इससे पता चलता है कि दुआएँ सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ी जाती, बल्कि हर दुआ का एक असर होता है। खुबूस और खबाइस, जिन्नों और जिन्नियों, नापाक जगहों पे ये गंदी चीज़ें रहती हैं। अब बताइए, जो लोग बिला वजह घंटा घंटा बाथरूम में गुजारते हैं, उनके ऐसा वजह होती है, लेकिन बाहर वालों को नहीं समझ आती कि इतनी देर रहने की क्या वजह है। क्या पसंद करेंगे कि ऐसी चीज़ों के साथ रहें? और इसका बहुत गहरा असर है इंसान के अखलाक के साथ। जिसके साथ इंसान का वक्त ज़्यादा गुजरता है ना, उतना ही उसका असर इंसान पे आता है। इसलिए टॉयलेट तो वो जगह है जो एमरजेंसी है, बस आप मजबूरी में गए और फौरन निकल आए। अगर आपको ये एहसास हो जाए ना कि यहाँ कुछ जिन रहते हैं या शयातीन है, तो आपका दिल ही ना वहाँ लगे। और हैरत होती है वो लोग जो अंदर मैगजीन रख के बैठे होते हैं, और अंदर जाके उन्होंने पूरे प्लान्स किए होते हैं। और हम इस कल्चर को बुरा ही नहीं समझते। और मैं तो हैरान होती हूँ जब मैं किसी के घरों में कभी ऐसी जगहों पे फिर पाकिस्तानी और ख़वातीन डाइजेस्ट और नावल और अफसाने देखती हूँ कि यही वजह जगह रह गई थी आपको आराम फरमाने की। यानी कितनी अजीब कैफियत होती है, सोचते नहीं। और एक चीज़ तो मेरी हैरत कि आपको पता है कि टॉयलेट में बगैर वजह के बात भी नहीं करनी चाहिए। बाद लोग अंदर जाके टॉवल मांग रहे हैं, या बच्चे अंदर हैं तो माएँ बाहर से चिल्ला रही हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। आपने कहा कि जब इंसान ऐसी जगह पे होता है तो फरिश्ते बाहर रह जाते हैं, आगे भी इसमें बात आ रही है, तो यहीं पे अगर इस पे बात हो जाए, टॉयलेट में कम से कम बात करें। और माँ शुरू से इसकी आदत डालती है, बस बच्चों को जब कमोड पे बिठाती हैं माएँ, या एक वो जैसे क्या बोलते हैं उसको जो बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, अलग से भी होते हैं ना बच्चों के, जी पॉटीज होती हैं ऐसी, तो फिर उस पर बिठा के साथ माएँ बातें शुरू कर देती हैं, इसलिए कि बच्चे भागे ना। और वो शुरू से उसको आदत पड़ गई है कि अब टॉयलेट में तो बातें ही करनी है। फिर गाने गाने की हैरत होती है। और हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मैंने ऐसा किसी का क्या कहते हैं कि शावर देखा कि जिसमें पूरे स्पीकर्स लगे हुए अंदर, और उसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, आप जो मर्जी सुने और सुनाएं। तो मैंने कहा ये है ना फारिग लोगों के मशगले, मुस्लिम कल्चर नहीं है ये। आपके हम कुरान लगा लेंगे तो क्या कुरान सुन सकते हैं अंदर? आपको लगाना चाहिए। ये चीज़ें लाशौरी तौर पे हमारे साथ में आ जाती हैं। फिर जो इतना पैसा लगाएगा वो वक्त भी तो गुजारेगा। आज भी देखिए, जब घर बनते हैं तो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ बाथरूम और किचन होता है। और मैं सोचती हूँ कि आपके तो आपके अपने बेडरूम से ज़्यादा अपने जिन्नों और जिन्नियों का बेडरूम से जाया हुआ। चलिए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। आगे चलिए, दुआ बहरहाल याद कीजिए। चले, ये तो बात हो गई कि जाते हुए खुबूसी वल खबाइस है कि आप अपनी प्रोटेक्शन में आते हैं, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जब दरवाज़ा बंद किया जाता है तो दूसरों से तो पर्दा कर लिया, तो क्या वो गंदी चीज़ों से भी पाक हुआ? क्योंकि ये चीज़ें अगर आप पे आपको चिमट जाएँ तो आपको डरा सकती हैं, आपको गमजदा करती हैं। ये सोचिए कि बाहर निकलते हुए क्यों कहा गुफराना का, कोई इसकी सेंस समझ आती है आपको? जी उल्फत, ओके ठीक है। और जी आप, जी शाबाश। गुफरान का इसलिए कि अल्लाह ताला इस जगह में हम तेरा जिक्र नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बात करने का हुक्म नहीं, तो इस पे भी हम अल्लाह की से माफ़ी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस गफलत के वक्त को माफ़ कर दे। बैतुल खला में अल्लाह ताला के नाम वाली कोई चीज़ साथ नहीं ले जानी चाहिए। अन अनस इब्न मालिकिन रदी अल्लाहु अन्हु कल, फिर पढ़े, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खला वदा खातमहु, रवाहु तिर्मिज़ी व निसाउ व इब्न माजा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में जाने का इरादा फरमाते तो अपनी अंगूठी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर था उतार दिया करते थे। इसे तिर्मिज़ी, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो इससे एक बात तो ये समझ में आई कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें अल्लाह का नाम हो, मसलन बाज़ लोग लफ्ज़ अल्लाह का लॉकेट पहनते हैं, बाज़ आयतुल कुर्सी लिखा लेते हैं, बाज़ लोगों ने ऐसे लॉकेट पहने होते हैं कि जिसके अंदर पूरा कुरान पाक रखा होता है। तो आप देखिए कि ऐसी चीज़ों को वैसे भी कोई इस्लाम में इतना पसंद नहीं किया गया। अल्लाह ताला कोई गले में लटकाने वाली चीज़ उसका नाम नहीं है, बल्कि उसका वो तो आपके दिल में उसकी मोहब्बत होनी चाहिए। आयतुल कुर्सी खुद पढ़ें, आप ना पढ़ें और आपके गले में लटक रही हो, ये भी असल में एक पैरोडी है उन लोगों की जो अपने गले में सलीब पहनते हैं या कोई ऐसी तस्वीरें लगाते हैं, तो इसलिए पसंदीदा नहीं है बहरहाल। लेकिन अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है भी तो फिर उसको उतार के बाहर रखिए, और इतनी दफ़ा आप उतारें रखेंगे तो उसमें भी फिर एक एहतमाम करना पड़ता है ना। और दूसरी बात यह कि नबी सल्लम अंगूठी पहनते थे, इस मर्द को अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो यानी जिसमें वो फिर खास ऑफ कोर्स सोने की तो नहीं पहन सकते, नबी सल्लम जब सुलह हुदैबिया के बाद आपने मुख्तलिफ बादशाहों को ख़त लिखे, तो उस दौर का रिवाज क्या था कि बादशाह मुहर के बग़ैर ख़त कबूल नहीं करते थे, एक प्रोटोकॉल की बात थी। जैसे आज आप बग़ैर टिकट के कोई पोस्ट करें तो वापस आ जाए, उस वक्त फिर आपने मोहर नबूवत बनवाई थी और उसमें इस तरीके से लफ्ज़ लिखा हुआ था कि सबसे ऊपर अल्लाह था, फिर मोहम्मद और रसूल, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह था, तो फिर आप उसकी स्टैंप लगाया करते थे। तो वो उस अंगूठी का इसमें तذکرہ। खुले मैदान में रफ़ हाजत के वक्त मुंह या पीठ किबले की तरफ नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता तहारत खाने के अंदर या दीवार की ओट में ऐसा किया जा सकता है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु अन रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा अहदुकुम अला हाजतिही फला यस्तक़बिलन अल-क़िबलता वला यस्तद वला यस्तदबिरहा, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदी अल्लाहु अन्हा के घर की छत पर चढ़ा, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छत पर रफ़ाए हाजत के लिए बैठे हुए देखा। आपका मुंह शाम की तरफ और पीठ किबले की तरफ थी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। और हज़रत हफ्सा जो थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बहन और नबी सल्लम की ज़ौजे मुख्तरमा थी। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले दौर में लोग खुले मुंह जब बैठते थे, अब ये एक रिवायत है ना, पहली चीज़ में अब बहुत ही गौर से सुनने की बात है, दो मुख्तलिफ हदीसें हैं। पहली में आपने मना किया, ठीक है, कि आप ऐसा ना करें, कि जब भी कोई बैठे तो किबले की तरफ ना करे मुंह। अब दूसरे में वो कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसे बैठे हुए देखा। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। बस लोग ऐसी ही रिवायतों को पेश करके फिर नाऊज़ुबिल्लाह नबी सल्लम की ज़ात पे भी कीचड़ उछालते हैं और मुसलमानों को भी यही कहते हैं कि देखें कि इस्लाम के अंदर बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। अब ऐसी दोनों रिवायतों को अब जमा कैसे करेंगे? इसमें मुहद्दिसीन ने का एक असूल है, और वो क्या है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि करो, हुक्म हो गया ना, डू दिस, बात समझिएगा, उम्मत को कहा कि ये करो या ना करो, और दूसरी तरफ ये अमल है कि आपने खुद किया या ना किया, तो दोनों में से हम किस हदीस को लेंगे जिसमें हमें कहा कि तुम करो कि ना करो? बात वैसे कोई खुद कुछ भी कर रहा है तो आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन जब कोई आपको कह देता है ना कि तुम ये करो तो फिर आप पे जिम्मेदारी है, एक बात। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जो बात आपने उम्मत के लिए कह दी वो उम्मत के लिए फ़र्ज़ हो गई। उसमें हो सकता है कि उम्मत के लिए वो चीज़ फ़र्ज़ थी, लेकिन अगर किसी मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अमल लाजिम ना हो। अब यहाँ आपकी बैक जो थी किबला की तरफ थी, तो इस दोनों को जमा करके आप देखें जो ऊपर मसला अखज़ किया गया उसकी बात समझ में आ गई। क्योंकि जब आप अपनी घर की छत पे थे तो गोया कि आप खुले मैदान में नहीं थे, बल्कि आप अपने एक किस्म के उस दौर के जैसे टॉयलेट थे उसी में थे। तो अगर इस वक्त अगर कोई घर बनाता है तो उसमें अगर कोई ऐसी कैफियत हो जाती है कि मुंह किबले की तरफ हो, तो इससे कोई हरज की बात नहीं। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को इतना अहम समझा जाता है कि मैंने बाज़ लोगों को इस बात पे भी मसला करते देखा है कि आपके कमरों में बेडरूम के पाँव जो है वो किबले की तरफ क्यों हैं, सर किबले की तरफ क्यों हैं। हमारे कल्चर में एक बड़ा मारूफ मसला है ना कि खाना काबा की तरफ पाँव नहीं होने चाहिए, तो आप तो पूरे अरब ही की तरफ नहीं करेंगे जब आप वेस्ट में रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाज़ लोग, यानी मैंने खुद भी देखी ये चीज़ कई कुछ साल पहले जब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया हज के लिए, उम्रे के लिए थी, तो हम सफ़ा मरवा में थे। तो सफ़ा मरवा आपको पता है कि बाज़ दफ़ा लोग उम्रे के बाद, उम्रा वहीं पे ख़त्म होता है और वापस जाते हैं, और बस जहाँ ख़त्म हुआ मरवा पे आप निकल जाएँ। तो एक शख्स थे, तो वो जब सही पूरी हुई तो चल, यानी मुंह उनका किबला की तरफ है और पीछे जा रहे थे, यानी मुंह नहीं, बैक नहीं करना चाह रहे थे किबले की तरफ। तब देखिए कि ये तकल्लुफात हैं। अल्लाह ताला हमें वैसे दीन को वैसे पुश ना डालने वाला बनाए, और लेकिन ये ज़ाहरी तज़ीम जो होती है इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ उन चीज़ों का होता है जो इंसान अमल में करता है। रफ़ा हाजत के वक्त शर्मगाह को दायां हाथ लगाना मना है, दाएं हाथ से इस्तंजा करना मना है। अन अबी क़तादत रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युम्सिकन्ना अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही वहुवा यबूलु वला यतमस्सह मिनल खलाई बियमीनिही वला यतनफ्फस फिल ईनाई, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाहु अन्हो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब करते वक्त कोई आदमी पेशाब की जगह को दाएं हाथ से ना छुए, ना ही दाएं हाथ से इस्तंजा करे, और ना ही कोई चीज़ पीते वक्त बर्तन में फूंक मारे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। यानी दायां हाथ खाने के लिए होता है और बायां हाथ अल्लाह ताला ने इसी तरह की चीज़ों के लिए दिया है। और इसमें फिर कहूँगी कि बचपन से बच्चों को आदत डालने के लिए माओं को भी इख्तमाम करना चाहिए। जब छोटे बच्चों को आप धोते हैं तो उस वक्त भी उनको आप सिर्फ अपने बाएं हाथ से ही धोएं। अगर बच्चे को पकड़ना है तो राइट हैंड पर उसको पकड़ें और लेफ्ट हैंड से उसको छुएं। फिर इसी से आप देखिए कि इस्लाम कितनी बारीक बातें सिखाता है ना। बस बातें बाज़ दफ़ा शर्म की वजह से या बाज़ लोग उसको दूसरों के सामने ना शेयर करने की वजह से नहीं करते, लेकिन इसी बात को सामने रख के आप देखिए कि हमारा दीन कितना मुकम्मल दीन है। अभी तक जितनी बातें इस पूरी नशिस्त में हमने की, इसमें कोई नमाज की या उस तरीके से किसी इबादत की बात नहीं हुई, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं वज़ू की, तहारत की, शावर की, ये वो। इससे पता चलता है कि दीन सिर्फ हमें नमाज रोज़ा ही नहीं सिखाता बल्कि ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल भी सिखाता है। इसीलिए एक मौके पे एक सहाबी थे तो किसी यहूदी ने उनको ताना दिया कि तुम्हारा नबी तो तुम्हें बैतुल्लाह में मतलब बैतुल खला में जाने की बातें भी बताता है। यानी उन्होंने आर दिलाई उसको, सहाबी को आर दिलाई कि आपका नबी क्या आपको इतनी छोटी छोटी बातें बताता है। तो बजाय इसके उनके कि वो शर्मिंदा होते, उन्होंने कहा हाँ मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारा नबी ऐसा है कि जो हमें बैतुल खला में जाने का तरीका भी बताता है। कौन बताएगा? जिसको आपसे मोहब्बत है ना, माँ को मोहब्बत होती है तो वो बच्चे को हर बात बताती है। इसी तरह तहारत दाएँ हाथ से शुरू करनी चाहिए। अन आयशत रदी अल्लाह अन्हा कालत इन काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा लयुहिब्बुत तयम्मुना फी तुहूरिही इजा ततखरा फी तरज्जुलिही इजा तरज्जला वफिन ती आली ही इजन त आला रवाहु मुस्लिम। इसको दोबारा पढ़ते हैं इस हदीस को। अन आयशत रदी अल्लाहु अन्हा कालत इन काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा लयुहिब्बुल तयम्मुना फी तुहूरिही इजा ततखरा फी तरज्जुलिही इजा तरज्जला वफिन तियालिही इजन तअला रवाहु मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करने, कंघा करने और जूता पहनने में दाईं तरफ से आगाज़ पसंद फरमाया करते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो अब हम अपने आप को भी फिर चेक कर सकते हैं कि क्या हम भी ये सारे काम राइट हैंड से करते हैं। वुज़ू की तो बात समझ आ गई, कंघी करने में सीधे हाथ से शुरू करने से क्या मुराद है कि पहले राइट साइड पे आप अगर कंघी शुरू भी कर रहे हैं तो पहले राइट साइड पे करें, और जूता पहनने में आप पहले दायां पाँव पहने और जब उतारें तो बायां पाँव पहले उतारें। रास्ते और साय की जगह में रफ़े हाजत करना मना है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول لعنت کے وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ راستوں میں بھی ایسی گندگی پھیلانا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی ایسی جگہ کا تصور کریں کہ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو گندگی دکھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے کہ وہ راستوں میں نہ کریں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ آج کل جہاں ہم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف ہے، اتنی نا اتنی خوبصورت صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن سائڈ پہ آپ کہیں دیکھیں تو کسی جانور کی گندگی، کہیں کسی کا کچھ۔ تو مجھے اس سے اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو بھی تھوڑا سا ٹرین یہ لوگ کریں تو یہ راستے بھی صاف ہوں، کہ بعض وہ واقعی وہ جیسے سفید چیز پہ گندگی زیادہ دکھتی ہے وہ کیفیت آتی ہے۔ تو میرے ذہن میں جب بھی میں ایسا کوئی منظر دیکھوں تو قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے کہ ज़हर अल फसाद, यानी फसाद फैल गया कि अल्लाह ने इतनी प्यारी साफ़ सुथरी दुनिया बनाई लेकिन लोगों के अमाल की वजह से फसाद फैलता है। लेकिन अपने आप को तो ख़ास तौर पे इसमें बहुत ही चेक कीजिए। बाज़ लोग यानी सुस्ती की वजह से बच्चों को बाथरूम में ले भी जाएं तो नीचे ही बिठा देते हैं या चलो इधर साइड पे बैठ जाओ, और बाज़ लोगों को तो सिंक को भी यूज़ करते देखा गया बच्चों के यानी फारिग करवाने के लिए। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, जो चीज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती फिर वो अमल में कैसी अच्छी लगेगी। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। यहाँ पर रुकते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।